আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদামু বাইনাল মায়ে ওয়াত্তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজ আমারি ইস রুহানি তরবিয়তি নশিস কা উনওয়ান কুরব ইলাহি হাসিল করনে কা তরিকা। یہ ملفوظات قطب ربانی میں سے ایک ارشاد گرامی ہے جو حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ۔ آئیے ذرا غور کریں کہ حضرت قطب ربانی نے قرب الہی کے متعلق کیا فرمایا۔ مسکن سادات اشرفی الجیلانی فردوس کالونی میں مریدین کے اجتماع سے حضرت نے خطاب فرمایا۔ ہر جمعرات کو مریدین کا اجتماع ہوتا تھا، اس کے علاوہ 17 اور 27 کو اور دیگر اہم تاریخوں میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں، اور جو ایسے 11 شریف کا مہینہ، اس قسم کے جو ایونٹ ہوتے تھے تو مریدین کا اجتماع ہوتا تھا اور حضرت کو دربانی اس میں خطاب فرمایا کرتے تھے۔ ذکر اذکار ہوتا تھا، نعت خوانی ہوتی تھی، محافل ہوتی تھی۔ انہی میں سے ایک محفل میں حضرت نے قرب الہی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ عقل حلال اور صدق مقال کو اپناؤ، اور اس کے بعد نوافل پڑھنے کا اہتمام کرو، کیونکہ نوافل ہی قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ پھر آپ نے بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے، بندے مومن نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یتقرب الی بالنوافل۔ اسی لیے بزرگان دین نوافل کو اپنا معمول بناتے ہیں، اور اکثر بزرگان دین کے آپ نے دیکھا نا معمولات میں کہ وہ رات میں نوافل پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بزرگان دین نوافل کو اپنا معمول بناتے ہیں، اس پر استقامت کے ساتھ عمل کر کے قرب الہی کو حاصل کرتے ہیں اور مقربین بارگاہ الہی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا سا غور کریں کہ دو چیزیں جو آپ نے اس میں فرمائی بڑی اہم ہیں، ایک عقل حلال اور دوسرا صدق مقال۔ ہم جو چیز کھاتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام۔ جو لقمہ ہم کھا رہے ہیں وہ کس ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے، جو رزق ہم کھا رہے ہیں وہ جائز طریقے سے حاصل ہوا، حلال طریقے سے حاصل ہوا، یا ناجائز طریقے سے، دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے، یا اور غلط طریقے سے، یا کسی بھی حرام طریقے سے اگر وہ حاصل کیا گیا ہے تو وہ حرام ہے۔ اس ضمن میں ایک بہت پیاری حکایت ذہن میں آتی ہے، حضرت بہلول دانا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ انسان کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ تو ایک بہت بڑے عالم وہاں سے جب گزرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ فرمایا، تمہیں نصیحت کی ضرورت نہیں۔ نہیں حضور، مجھے کچھ نصیحت کیجیے، کچھ ارشاد فرمائیے، کچھ بتائیے۔ فرمایا، تمہیں نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، تم خود عالم ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب زیادہ زور دیا، کیونکہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے کوئی بات ہمیں مل جائے، کوئی نصیحت مل جائے، ان کا کوئی ارشاد مل جائے تو اس پہ ہم عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ کھانے کے آداب کیا ہیں۔ کھانے کے آداب؟ کہاں کھانے کے آداب؟ تو तो हैरान हुए कि ये तो बहुत मामूली सी बात है, ये इतने बड़े बुजुर्ग और ये मुझसे पूछ रहे हैं खाने के आदाब क्या है। तो पहले तो हैरान हुआ, फिर उनका हुजूर अदब ये है कि हाथ धोकर बैठा जाए और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाने की इब्तिदा की जाए, सीधे हाथ से खाया जाए, एक एक लुकमा अच्छी तरह चबा कर, यानी उसमें जल्दी ना हो, ये ना, जो जो चीज़ें थी उन्होंने बयान कर। उन्होंने कहा अफसोस, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। ये कह के आगे चल पड़े। अब ये परेशान हुए कि ये खाने के आदाब तो यही हैं, और आपसे भी अगर कोई पूछे, हमसे पूछे, तो हम यही बताएंगे कि भाई अदब यही है कि दोनों हाथों को धोकर अच्छी तरह आदमी बैठे, फिर खाना सामने रखे, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े, फिर दाएं हाथ से वो इब्तिदा करे खाने की, आहिस्ता आहिस्ता खाए, जिस तरह के सुन्नत तरीका है। उन्होंने भी ये बयान कर दिया। उनका अफसोस, इतने बड़े आलिम और तुम्हें ये भी नहीं पता। ये कह के आगे बढ़ गए। अब ये फिर पीछे पीछे, हुजूर बताइए खाने के आदाब। कब यही तो हैं जो मैंने बताया। कहा नहीं, अफसोस। खैर, जब उनकी काफ़ी मिन्नत समाजत की तो उनका सुनो, खाने का सबसे पहला अदब ये है कि लुकमा हलाल का होना चाहिए। ये कह के आगे बढ़ गए। अब आप देखें कि इस जुमले में कितनी जामियत है कि लुकमा हलाल का होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि तुम कितने हाथ धो के बैठ जाओ, कितनी बिस्मिल्लाह पढ़ लो, लेकिन वो खाना जो हराम से हासिल किया गया, हराम कमाई से हासिल किया गया, उससे क्या फ़ायदा हो। और जब वो हराम कमाई का माल, वो खाना, वो रिज़क आपके जिस्म में जाएगा और खून बनकर दौड़ेगा, तो वैसे ही आमाल व अफ़ाल व किरदार सरज़द होंगे। तो कितनी बड़ी बात है कि लुकमा हलाल का होना चाहिए। का पहला अदब यही है कि लुकमा हलाल का होना चाहिए। इसी को खुद रब्बानी फरमा रहे हैं, अगर क़ुर्ब इलाही चाहते हो, अक्ल हलाल और सिदक मकाल। पहली चीज़ बताई, अक्ल हलाल यानी रिज़क हलाल का हो। अब उसमें क्या है, इंसान हर चीज़ में देखे, इसमें झूठ ना हो, इसमें गीबत ना हो, इसमें धोखा दही ना हो, झूठ बोलकर मैंने पैसा ना कमाया हो, गलत काम करके पैसा ना कमाया हो, किसी का हक गसब करके पैसा ना कमाया हो, यतीम बेवाओं का माल खा कर, यानी बल्कि उन्हीं के माल से मैंने ये रिज़क ना कमाया हो, ये सारी चीज़ें अगर वो अपना जायज़ा ले, तो पता चल जाएगा कि अक्ल हलाल क्या है और हराम क्या है। तो जो जो हराम चीज़ें हैं उनसे इज्तनाब करे, और सीधे सादे तरीके से जो सुन्नत तरीक़ा है, जो इस्लाम का तरीक़ा है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताया, रिज़्क हलाल, उस तरह हासिल करे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब वो जिस्म में जाएगा और लुकमाए हलाल आपके जिस्म का हिस्सा बनेगा, तो इबादत में खुशू और खुजू भी पैदा हो। ये भी एक बात है, आज बाद लोग कहते हैं ना जी इबादत में खुशू और खुजू पैदा नहीं हो रहा। उसमें वजह यही है कि जो खाना है आप देख लें, उसमें आप कह नहीं सकते कि 100% ये रिज़्क़ हलाल है। हाँ, ये भी हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें एहतियात करते हैं, और इल्ला माशाल्लाह बहुत ऐसे हैं जो नहीं भी करते, बल्कि अक्सरियत नहीं करती, लेकिन ऐसे भी हैं नेक बंदे कि जो अपनी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से पैसा हासिल करते हैं और फिर रिज़्क़ खाते हैं। तो उनकी नमाज़ों में भी असर है, उनकी ज़बानों में भी असर है, उनकी इबादत में भी खुशू और खुजू होता है। तो पहली चीज़ तो हो गई अक्ल हलाल, दूसरी सिदक मकाल, यानी जो बात कहे वो सच्ची कहे, उसमें झूठ की आमेजिश ना हो, उसमें किसी की गीबत ना हो, उसमें किसी की दिल आज़ारी ना हो, उसमें फ़हश गोई ना हो। इन दो चीज़ों पर अगर आदमी कंट्रोल कर ले, तो हज़रत क़ुतुब रब्बानी के इरशाद के मुताबिक क़ुर्ब इलाही हासिल कर सकता है। अच्छा, पहले ये दो चीज़ें फरमाई, फिर उसके बाद फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस का हवाला देते हुए नवाफिल की फजीलत बयान फरमाई। उसमें एक लफ्ज़ है ना, यतक़र्रब इलैया बिन नवाफिल, वो नवाफिल के ज़रिए मेरा क़ुर्ब हासिल करता है। तो जब अक्ल हलाल और सिदक मकाल उसने हासिल कर लिया, यानी अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़क जो है वो भी पाकीज़ा है, और उसकी ज़बान भी पाकीज़ा है, ज़बान से भी कोई ऐसा जुमला नहीं निकल रहा, उसकी इबादत में भी खुशू और खुजू है, अब तीसरा दर्जा ये है कि फिर वह नवाफिल की कसरत करे। और जब वो कसरत के साथ नवाफिल पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसे अपना क़ुर्ब अता फरमा देगा। हमारी कैफियत क्या है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं जी, क़ुर्ब इलाही हासिल नहीं हुआ, हमने हज किया, क़ुर्ब इलाही हासिल नहीं हुआ, हमने रमज़ान के रोज़े रख लिए, हमने ज़कात व सदक़ात व खैरात दे ली, हम शबे बारात में शबे कदर में भी जाग लिए लेकिन कोई कुर्ब हासिल नहीं हुआ, कैसे हासिल होगा? जो असल मेन चीज़ है आप पहले उसे दूर करें, जब वो गलत चीज़ें गलत काम दूर हो जाएंगे तो खुद ब खुद इबादत में खुशू और खुजू पैदा होगा। इसीलिए आप देखें बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन इन तमाम चीज़ों में कितना एहतियात करते, खाने पीने में खुसूसन, कोई ऐसा लुकमा कोई ऐसी चीज़ हमारे मुंह में न चली जाए कि जिसकी वजह से वहाँ पकड़ हो जाए और जिसकी वजह से इबादत में खलल पैदा हो जाए। असल इबादत का खुशू और खुजू है, और जब इबादत में खुशू और खुजू है तो ये इस बात की दलील है कि आपका रिजक भी पाकीज़ा है, आपकी ज़बान भी पाकीज़ा है, आपके आमाल व अफ़आल व किरदार भी पाकीज़ा। क्योंकि रिजक का असर जो है ना वो जिस्म पर लाजमी होता है, और जिस का गोश्त आप खाएं उसकी खसूसियात उसकी कैफियत भी पैदा होती, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें मना हैं, और खसूसन चिल्ला कशी में तो हर किस्म का गोश्त जो है मना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी जो एहतियातें हैं, ये सारे जो परहेज हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि उन तमाम चीज़ों से बचने से इंसान के अंदर इबादत में खुशू और खुजू पैदा होगा, रुजू इलल्लाह होगा, इबादत में मज़ा आएगा, इबादत की लज्जत उसे हासिल होगी, और फिर वो कैफियत उसके कल्ब पर वारिद होंगी। तो हज़रत क़ुतुब रब्बानी ने फरमाया इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अक्ल हलाल सिद्क़े मक़ाल को अपनाओ और इसके बाद नवाफिल पढ़ने का इहतमाम करो, क्योंकि नवाफिल ही क़ुरब इलाही का ज़रिया हैं। अतः नवाफिल का जो फरमाया इसमें एक बात काबिल गौर है, इसमें ऐसा नहीं कि हम फ़राइज़ को छोड़कर नवाफिल की कसरत करें, यानी नमाज़ें हमारी गायब हों और हम कसरत के साथ नवाफिल पढ़ रहे हैं। फ़र्ज़ की जो अहमियत है वो नफिल की नहीं है। हाँ, नवाफिल सुन्नतें ये फ़राइज़ की तकमील के लिए हैं कि अगर क़यामत के दिन उसमें कुछ कमी होगी तो खालिक़े कायनात अपने करम से इन नवाफिल के ज़रिए उसे पूरा फरमा देगा, लेकिन फ़र्ज़ को अदा करना और वक्त पर अदा करना ये वाजिब है, लाजिम है, ज़रूरी है। तो नवाफिल का जो हुक्म दिया गया ना, इसमें साथ साथ इशारा ये भी है कि पहले वो फ़राइज़ मुकम्मल करें, और जब फ़राइज़ मुकम्मल हो रहे हैं तो फिर वह नवाफिल की तरफ तवज्जो दे, और अपने जहन में ये सोचे कि मैं इसकी वजह से इसके ज़रिए मैं अपने रब का क़ुर्ब हासिल कर लूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला अपना क़ुर्ब अता फरमा देगा। तो हमें चाहिए कि हम बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के इन मनफूजात को पढ़ें, इनको समझें, इस पर अमल करें, इसी में फलाह है, इसी में नजात है, इसी में कामयाबी है। और ये मनफूजात जो हैं ये राह सलूक में कामयाबी तय करने का एक ज़रिया है। एक एक मनफूज को आप देख लें, एक एक इरशाद गिरामी को आप देख लें, अगर आप उसको याद करके समझ कर उसको पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इबादत में खुशू और खुजू भी पैदा होगा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला का क़ुर्बी हासिल होगा। ये मुकर्रबीन बारगाह इलाही हैं, इनके इरशादात पर अमल करने से इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें हमें हासिल हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और इनके इरशादात पर अमल करने की और अपनी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।